समय सार लेक्चर नंबर 691 ओम नमः सिद्धे आचार्य भगवान का समय सार है और उस समय सार के सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार के 318 नंबर के गाथा के बाद का जो कलश है 198 उसको हम देख रहे हैं और हम पृष्ठ क्रमांक 82 पर आए हैं। यहाँ दूसरा या पहला पैराग्राफ जो है नया, वहाँ गुरुदेव कह रहे हैं धर्म कोई अपूर्व चीज छे भाई, पूर्वी कदी एने धर्म कर्यो नथी। एने एटले आ जीवे एटले जे मिथ्या दृष्टि छे एने कर्यो नथी। अंदर वस्तु तो अंदर पूर्ण एटले पूरण ज्ञान घन स्वरूप पूर्णता थी भरेली छे। यानी ये आत्मा कैसा है तो कहते कि ज्ञान रूप है, ज्ञान स्वरूप है, लेकिन कैसा है वो ज्ञान? ज्ञान घन, घन यानी जिसमें अन्य कोई प्रवेश न कर सके, राग का भी जहाँ प्रवेश नहीं है, ऐसा ज्ञान घन स्वरूप, और वह भी परिपूर्ण है। पूर्ण अनंत स्वभाव होती भरेलू वस्तु तो अंदर पूर्ण ज्ञान घन स्वरूप छे। तेना ज्ञान श्रद्धान ने रमणता थया ते हवे स्वभाव में रक्त छे, અને વિભાવથી વિરક્ત છે એટલે લીન છે, અને અહીંયા લીન નથી, એનાથી છૂટો છે, વિભાવથી છૂટો છે। ભક્તિ પૂજા આદિનો રાગ આવે પણ તેનાથી જ્ઞાનીને એકત્વ નથી, વિરકિત છે। હા, વિરકિત વિરક્તિ છે। અચ્છા અચ્છા એને કેવળ કર્મને કર્મનો સ્વભાવ જાણે છે, રાગને છે ને એને તો કર્મનો સ્વભાવ કહે છે। ભાઈ આ કોઈ કલ્પિત વાત નથી, આ તો સર્વજ્ઞથી સિદ્ધ થયેલો માર્ગ છે। હવે કહે છે પરમ જાનન એમ કેવળ જાણતો થકો કર્ણ વેદનયોહો અભાવાત, કર્ણના અને વેદનના એટલે કરવાના અને ભોગવવાના અભાવ ને લીધે શુદ્ધ સ્વભાવ નિયત સહી મુક્ત એવ, શુદ્ધ સ્વભાવના સ્વભાવમાં નિશ્ચળ એવો તે ખરેખર મુક્ત છે। યાની યહાં દેખો જહાં આત્માનુભૂતિ હો ગઈ હૈ ઉસકો તો કહેતે વો અભી મુક્ત જૈસા હી હૈ। ધર્મી પુરુષ શુદ્ધ સ્વભાવમાં નિશ્ચળ એવો ખરેખર મુક્ત છે, સ્વભાવમાં એકત્ર થયું છે તે રાગથી મુક્ત જ છે। ભગવાન સિદ્ધ રાગથી સર્વથા મુક્ત છે તેમ દ્રષ્ટિની પ્રધાનતાએ જ્ઞાની રાગથી મુક્ત છે। કેમ કે જ્ઞાનીને રાગનું કરવાપણું અને ભોગવવાપણું નથી. રાગનો ધર્મી પુરુષ કરતાય નથી અને ભોગતાય નથી, માટે તે મુક્ત જ છે. લ્યો આવી વાત. આહાહા, વસ્તુ આત્મા અંદર નિર્મળ નિર્વિકાર પૂર્ણ આનંદ કંદ પ્રભુ છે, એના આશ્રય જેને એના જ્ઞાન શ્રદ્ધાન અને નિર્મળ આચરણ પ્રકટ થયા, તે જીવ વિભાવથી કર્મના સ્વભાવથી વિરક્ત છે. જેમ સાકરની કટકી મોઢામાં મૂકતા ભેગી ચિરોડીની કટકી આવી જાય તો ફડાક તેને ફેંકી દે છે. એ ચિરોડી ક્યાં હોતા હે ભાઈ? ક્યાં ભાઈ? એ રંગોલી બોલતે ના, વો પાઉડર કૈસે હોતી હૈ દિખને મેં સફેદ, ઓર શક્કર ભી કૈસી હૈ સફેદ, લેકિન વો મુંહ મેં ડાલો ઓર વો મુંહ મેં ડાલો ફર્ક આવે કે નહીં? તો કે ફડાક દઈને ફેંકી દે. એ નિમચંદ કાકા કા ફેવરિટ શબ્દ હતો. હા, કટકી ને થોડી સી પાઉડર એસા સમજ લો ના, યા તો ઉસકા જો યે હોગા, શક્કર કા ભી ખડી શક્કર હોતી હૈ ના, વૈસે ઉસકા ભી હોતા હોગા કોઈ, જિસસે વો પાઉડર બનાતે હોંગે. એ તો પથ્થર હી હોગા, ઓર ક્યા હોગા? રંગોલી ક્યા હોતી હૈ? પથ્થર જ હોય ના, એની કટકી ખાવા દો ને, કટકી આપણા હું છે. એ સાકરની કટકી મૂકતા અને એ એસી હૈ બાત. આજકલ કે જમાને મેં વો પાઉડર મિલતી, પહેલે તો એસી જાડી હી મિલતી થી, ઓર અભી ભી દેખો બજાર મેં જો જાડી શક્કર હોતી હૈ ના, મતલબ જો જિસકો હમ મોરસ સાકર કહેતે, વો ભી જીતની બડી હોગી વો મહેંગી હૈ, ઓર છોટી છોટી દુબલી દુબલી હોતી હૈ વો તો સસ્તી આતી હૈ, એક દો રૂપિયા કિલો સસ્તી મિલતી હૈ. તો ઇસસે ભી વો ખડી શક્કર કી જો કટકી આતી થી વો ઓર મીઠી હોતી. તો એ જૈસી એ રંગોલી કી ભી વૈસી ખડી શક્કર ખડી કી જૈસી કોઈ હોગી ચીજ જિસસે યે બનાતે હોંગે. એ તો પથ્થર કી પાઉડર હોની ચાહીએ, ઓર કે. તેમ આનંદ ઘન પ્રભુ આત્માનો અનુભવ થતા ચિરોડીની કણી સમાન ભેગો રાગ આવી જાય તો ફડાક તેને ફેંકી દે છે. અભી હમ યે શક્કર ઓર યે છોડો, હમ ક્યા કહે રહે કે ખીચડી ખા રહે હૈ, મુલાયમ મુલાયમ ચાવલ હૈ, ઓર ઇસમે ઇતના સા અગર કટકી આ જાય પથ્થર કી તો કૈસા લગતા હૈ, ફેંક દેતે હમ, થોડી ખા ડાલેંગે. ઉસકી સબ ક્વાલિટી હી જુદી હૈ, સબ જુદા હૈ. વૈસે યે જો આનંદ ઘન સ્વભાવ હૈ ઉસમે રાગ એક જૈસે અનવોન્ટેડ થિંગ હૈ, જો હૈ નહીં અપના સ્વભાવ એસા. એ લિખા ના ઉપર સે ચોથી લાઇન મેં, તેમ આનંદ ઘન પ્રભુ આત્માનો અનુભવ થતા ચિરોડીની કણી સમાન ભેગો રાગ આવી જાય તો ફડાક તેને ફેંકી દે છે. કોણ? ધર્મીજી. વાસ્તવમાં રાગનો નિર્મળ અનુભવની પરિણતિમાં પ્રવેશ જ નથી, રાગનો અનુભૂતિમાં પ્રવેશ જ નથી. આ પ્રમાણે જ્ઞાની રાગથી મુક્ત જ છે. ભાવાર્થ, જ્ઞાની કર્મનો સ્વાધીનપણે કરતા ભોગતા નથી, કેવળ જ્ઞાતા જ છે, માટે તે કેવળ શુદ્ધ સ્વભાવરૂપ થયો થકો મુક્ત જ છે. કર્મ ઉદયમાં આવે પણ છે તો પણ જ્ઞાનીને તે શું કરી શકે? જ્યાં સુધી નિર્બળતા રહે ત્યાં સુધી કર્મ જોર ચલાવી લે, ક્રમે સબળતા વધારીને છેવટે તે જ્ઞાની કર્મનો નિર્મૂળ નાશ કરે જ. જો જ્ઞાનીને કર્મ ઉદયમાં આવે છે અને નિર્બળતાવશ તેને કિંચિત રાગ પણ થાય છે, પણ તેનો તે જ્ઞાતા જ રહે છે. જ્યાં સુધી નિર્બળતા છે ત્યાં સુધી કર્મનું જોર છે, પણ સ્વરૂપનો ઉગ્ર આશ્રય લે કરીને સબળતા વધારતો થકો જ્ઞાની છેવટે કર્મનો નિર્મૂળ નાશ કરે જ કરશે જ. આહા, અંદર आनंद नो नाथ पूर्ण बलियो, पूर्ण स्वभाव थी भरियो छे, भरितावस्थी याद आ गया मन। अनंत बल नो स्वामी ते निज स्वभाव नो उग्र आश्रय करीने कर्म नो निर्मूल नाश करशेज। आ प्रमाणे ज्ञानी केवल शुद्ध स्वभाव रूप थयो थको मुक्त ज छे। गाथा 319
यहाँ कहते हैं, अबे आज अर्थ ने फरी दृढ़ करे छे, इसी अर्थ को और फिर बताते हैं। नविको वैण विवेयै नाणी कम्माय बहुपयाराय जानै पुण कम्म फलम बन्दं पुण्यं च पावं च नापि करोति नापि वेदयते ज्ञानी कर्माणि बहु प्रकाराणि जानाति पुनः कर्म फलम बन्धं पुण्यं च पापं च करतो नथि नथि वेदतो ज्ञानी कर्म बहुविधने बस जानतो ए बन्धते मज कर्म फल शुभ अशुभने करतो नथि नथि वेदतो ज्ञानी कर्म बहुविधने बस जानतो ए बन्धते मज कर्म फल शुभ अशुभने। गाथा का अर्थ देखते हैं, वैसे बहुत सरल है गाथा, जो विषय आ चुका है उसी की बात यहाँ दोहराते हैं। ज्ञानी बहु प्रकाराणी इतले बहु प्रकारना कर्माणी कर्मों ने न अपि करोती करतो पण नथी न अपि वेदयते वेद तो इतले भोगवतो पण नथी पुनः परंतु पुण्यम च पापम च पुण्य ने पाप रूप बंधम कर्म बंधने कर्मफलम तथा कर्मफल ने जानाति एटले जाने छे। क्या कहते ज्ञानी बहु प्रकारना कर्मों ने करतो पण नथी अने वेदतो एटले भोगवतो पण नथी तो शू करे छे परंतु पुण्य ने पाप रूप कर्म बंधने तथा कर्मफल ने जाने छे बन्ने ने बंधने पण ने कर्मना फळने पण। टीका कर्म चेतना रहित होवाने लीधे तो कर्म चेतना रहित है तो किस चेतना सहित है। हाँ रेशमाबेन कौन सी चेतना है उसको कर्म फल कर्म चेतना नहीं है कौन सी चेतना है। हाँ ज्ञान चेतना है। कर्म चेतना का अर्थ क्या है। हाँ हाँ अब क्या कहते हैं नलिन भाई कर्म चेतना का अर्थ क्या है। हाँ कर्मों का उदय होना कर्म चेतना नहीं है। कर्मों का उदय तो ज्ञानी को भी है। हाँ सुखरूप या दुखरूप अनुभव ना
वो
कर्म फल चेतना हो गई। हाँ अपने को राग रूप अनुभव ना चेतना शब्द है ना अपने को किस रूप उसने स्वीकार किया तो राग रूप मैं राग रूप हूँ मैं पुण्य रूप हूँ पाप रूप हूँ शुभ शुभ रूप हो गया हूँ ऐसा जो उसने स्वीकार किया ऐसा जानना चल रहा है उसका अपने को कैसा फील कर रहा है राग रूप तो ये कर्म चेतना हुई और उसके उदय में हरक शोक के परिणाम होते हैं तो मैं सुखी और मैं दुखी ऐसा जो अनुभव चलता है उसको कर्म फल चेतना कहते।
देखो हम बोलते हैं ना लौकिक में ये देखो भाई तुम हमको तकलीफ मत देना वैसे तो मैं शांत स्वभावी हूँ लेकिन जरा बिगड़ गया ना तो फिर मेरे जैसा खराब कोई नहीं तो ये कर्म चेतना है। मैं रागी हूँ और मैं भड़क माथे का हूँ ऐसा बोलती ना तो वो कर्म चेतना हुई। तो ये कर्म चेतना और ज्ञान चेतना वैसे देखा जाए तो एक साथ नहीं रहती। जिसके ज्ञान चेतना है उसके कर्म चेतना नहीं होती ऐसा साधारण नियम है। लेकिन फिर जितनी वितरागता है जितनी सरागता है उसमें आप डिवाइड करो तो बात जुदी है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं देखो अभी,
यानी उसके राग नहीं है ऐसी बात है क्या? पर्याय में राग है पर उस रूप अपने को अनुभवता नहीं है, अपने को भिन्न अनुभवता है, इसलिए उसको कर्म चेतना नहीं है कहा। क्या उसके हरक शोक के परिणाम होते हैं क्या नहीं होते ज्ञानी को? हाँ, अपने को उस रूप नहीं क्योंकि उससे भिन्न अनुभवता है, इसलिए उसका वेदक नहीं है ऐसा कहा, अवेदक कहा। यानी उसके पर्याय में हर्ष शोक के परिणाम नहीं होते वो बात नहीं है, नहीं तो रामचंद्र 6 महीने तक शोक करते रहा ना वो लक्ष्मण के लिए, और सीता के लिए भी बहुत शोक किया उसने। तो शोक नहीं होता ये बात नहीं है, परंतु अपने को उस रूप नहीं अनुभवते ये बात है। तो उनके तो ज्ञान चेतना है ना, अपने को ज्ञान रूप अनुभव चलता है। पर्याय में राग भी है और जितना पुराने कर्मों का उदय है और उसके कारण जो कोई बातें बनती, जितना राग विद्यमान है ना, 3 चौकड़ी है या 2 चौकड़ी जितना भी है, उतना उसमें हरक शोक के परिणाम भी वहां हो गए, परंतु अपने को उस रूप नहीं अनुभवते। कहीं कहीं जितने मात्रा में राग है उतनी कर्म चेतना भी कहेंगे, ये आगम और अध्यात्म के कथन अलग अलग आते हैं, उस अपेक्षा से वहां है ऐसा भी कहेंगे, फिर भी वो अपेक्षा समझ में लेनी चाहिए। अब टीका पढ़ेंगे। कर्म चेतना रहित होवाने लीधे पोते अकर्ता हुआ थी, ये किसकी बात चलती होगी? ज्ञानी की। अनेक कर्म फल चेतना रहित होवाने लीधे पोते अवेदक हुआ थी। देखो दो बातें आई, अकर्ता क्यों कहा? क्योंकि कर्म चेतना से रहित है, यानी अपने को राग रूप नहीं अनुभवता तो राग का कर्ता नहीं है, इसलिए वो अकर्ता है। अब वो जो सुख दुख के परिणाम हो रहे हैं उस रूप अपने को नहीं अनुभवता, यानी कर्म फल चेतना नहीं है उसके, तो वो भोगता भी नहीं है वो सुख दुख का। क्यों नहीं? क्योंकि वो ज्ञान और वो दोनों का भेद अभी जान रहा है। तो मैं सुखी हो गया, मैं दुखी हो गया, ऐसा वह अपने पर्याय में जो सुख दुख है उसको जानेगा अवश्य, परंतु वह उसका भोगता नहीं है, उसमें एकत्व नहीं होता उसको। तो यहाँ क्या कहा? अकर्ता और अभोक्ता हुआ थी। ज्ञानी कर्म ने करतो नथी, तेमज वेद तो एटले भोगो तो नथी, परंतु ज्ञान चेतना में होवाने लीधे केवल ज्ञाता ज हुआ थी, यानी ना करता है ना भोगता है, यानी राग का करता नहीं है और वो सुख दुख का भोगता नहीं है, तो कुछ भी करता है क्या? क्या शून्य हो गया? तो कहते वो ज्ञाता है, जानने का कार्य चल रहा है उसका। ज्ञाता ज हुआ थी, शुभ अथवा अशुभ कर्म बंधने तथा कर्म फल ने केवल जाने छे, यानी जितनी मात्रा में राग है उतना पुण्य पाप का बंध भी है, और पुराने बंधे हुए जो अभी उदय में आ रहे हैं उसका फल भी वहां चल रहा है, इसलिए बंध को भी कहा और फल को भी कहा। तो शुभ अशुभ कर्म बंधने, यानी शुभ अशुभ जो राग चल रहा है वहां कर्म बंध हो रहा है, कर्म बंध का वो लक्षण ही राग कहा था, पहले बात आई थी, बंध का लक्षण राग है और मेरा लक्षण ज्ञान है, तो दोनों का जुदा जुदा लक्षण जाना था प्रज्ञा चीनी के द्वारा, उसको भेदा भी था। वही बात यहाँ कि शुभ और अशुभ कर्म बंध ने जाने चे, ने राग ने जाने चे, और कर्म फल यानी पुराने कर्मों के उदय में जो अभी नया वहां फल मिल रहा है सुख दुख का, हरक शोक के परिणाम हो रहे है, वो दोनों को ही जानता ही है, करता नहीं भोगता नहीं। अब ये बहुत आसान है गाथा, वैसे जो विषय हमारा हो चुका उसी को दृढ़ किया है यहाँ पर, इस पर प्रवचन अभी पढ़ेंगे।
हवे आज अर्थ ने फरी दृढ़ करे छे, जो हमने गए गाथा में देखा था 318 में कह रहे हैं, कर्म चेतना रहित होवाने लीधे पोते अकर्ता हुआ थी, यानी अभी वो ज्ञान चेतना में है इसलिए स्वयं राग द्वेष का कर्ता नहीं है, ये पोते अकर्ता हुआ थी। अने कर्म फल चेतना रहित होवाने लीधे, यानी मैं उसका कर्ता भोगता हूँ और इसलिए मैं सुखी दुखी होता हूँ, ऐसी जिसकी वृत्ति नहीं रही है इसलिए कर्म फल चेतना रहित होवाने लीधे पोते अवेदक એટલે અભોક્તા હોવાથી જ્ઞાની કર્મને કરતો નથી, યાની એ રાગ દ્વેષ કે જો પરિણામ હૈ ભાવ કર્મને કરતો નથી, તેમજ વેદતો એટલે ભોગવતો નથી. પરંતુ જ્ઞાન ચેતનામય હોવાને લીધે કેવળ જ્ઞાતા જ હોવાથી શુભ અથવા અશુભ કર્મ બંધને, યાની એ ભાવ કર્મ કે કારણ જો બંધ હો રહે ને, તો શુભ ઓર અશુભ ભાવરૂપ જો બંધ હૈ તથા કર્મફળને કેવળ જાણે જ છે, એમનો કરતા નથી એમ કહે છે. કોણ? જ્ઞાની. અને આ જ્ઞાની પણ એનો કરતા થઈ શકતો નથી, પરંતુ આ જ્ઞાની માનતે કે મેં ઇસકા કર્મો કા યાની શુભા શુભ ભાવ કા મેં કરતા હું, ઉસકે કારણ મેં સુખી દુઃખી હો રહા હું. એસા અજ્ઞાની ભલે વિપરીત માને, લેકિન વો ભી ઉસકા કરતા નહીં ઓર ભોગતા નહીં હૈ. એસી બાત હૈ. જેમાં રાગનું ચેતવું થાય છે, જ્ઞાનનું ચેતવું નથી, તે કર્મ ચેતના. ક્યા કહા? યાને રાગ કા હી જિસમે જ્ઞાન હો રહા હૈ કે મેં સ્વરૂપ રાગ કો હી માન રહા હૈ, રાગ કો હી મેં હું. ઓર જ્ઞાનનું ચેતવું નથી, યાને જ્ઞાન સ્વરૂપ મેં હું એસા ઉસકો જ્ઞાન નહીં હો રહા હૈ, ઉસકો કહા કર્મ ચેતના. આ હિંસા, ઝૂઠ, ચોરી, વિષય વાસના આદિ અશુભ રાગ ને દયાદાન વ્રત ભક્તિ આદિ શુભ રાગનું જે ચેતવું છે તે કર્મ ચેતના છે. એક વાર સાંભળ ભાઈ, આય કહે છે જ્ઞાની કર્મ ચેતના રહિત છે અને તેથી અકર્તા છે. શું કીધું? કે આત્મા જ્ઞાનનો સાગર પ્રભુ છે, તેનો જેને અંતરમાં અનુભવ થયો તે જ્ઞાની પુરુષ છે. આ જ્ઞાની પુરુષ એમ જાણે છે કે હું તો ચેતના માત્ર સ્વભાવથી ભરેલો ભગવાન છું, કર્મ ચેતનાથી રહિત છું, પુણ્ય પાપ આદિ ભાવ મારું સ્વરૂપ નથી. ક્યા કહા? એ કર્મ ચેતના કા અર્થ દિયા ના, કે પુણ્ય પાપ રૂપ ભાવ જો હૈ એ મારું સ્વરૂપ નથી, એટલે કર્મ ચેતનાથી હું રહી છું. એસા સમ્યક દ્રષ્ટિ જાણતે હૈ, રાગમાં એકત્વ નથી ને. તેથી જ્ઞાની રાગના કરવાપણાથી રહિત હોવાને લીધે અકર્તા છે. તો શું ધર્મીને રાગ હોતો નથી? કે ધર્મીને રાગ હોય છે પણ એનું સ્વામીપણું એને નથી. એ બહુત બાર બાત આવી હૈ, લેકિન હમારે જ્ઞાન મેં બેઠી કે નહીં માલુમ નહીં, ઓર માન્યતા મેં બેઠની ચાહીએ. ક્યાં કહે રહે કે ધર્મીને તો રાગ હોય છે પછી પણ એનું સ્વામીપણું એને નથી. જેને સચ્ચિદાનંદમય નિજ આત્મવસ્તુનું સ્વામીપણું થયું છે તેને ધર્મીને રાગનું સ્વામીપણું નથી. જેમ બે ઘોડે સવારી થાય નહીં તેમ આત્માનું અને રાગનું બંનેનું સ્વામીપણું બનતું નથી. જૈસા કહેતે ના કે દો નાવ પે એક પૈર રખેગા તો જલ્દી ડૂબ જાયગા, યાને ઇસકો એક હી મેં કહીં આના ચાહીએ, દોનો ડગરી પે પૈર રખના કહેતે ના, વૈસા યહાં કહે રહે હૈ કે બે ઘોડે સવારી થાય ને એક સાથ દો ઘોડે પે બેઠું તો નહીં હોગા. વૈસે આત્મા કા ભી મેં સ્વામી હું, યાને જ્ઞાન કા ભી સ્વામી હું, ઓર રાગ કા ભી મેં સ્વામી, યાને ઉસકા મેં કરતા હું ભોગતા હું, એ દોનો નહીં બન સકતા. તેથી આનંદના નાથ ભગવાન આત્માનું જેને સ્વામીપણું થયું તેને રાગનું સ્વામીપણું નથી, અને તેથી તે રાગનો અકર્તા છે. જ્ઞાની જાણનાર બંનેનો છે પણ સ્વામી બંનેનો નથી. એ જ્ઞાની જાણનાર બંનેનો છે તે કોણ સે બંને કો જાણતા હૈ બેન? પ્રેરણા બેન ઓર રાગ, એ તે બંનેને જાણે છે પણ સ્વામી બંનેનો નથી. તો સ્વામી કોનો છે? પોતાના સ્વરૂપનો સ્વભાવનો, પણ એ રાગ તો એની અંદર જ પેદા થાય છે ને. હા, તો જ્ઞાન પણ એના અંદર છે ને, જાણે છે, તો બંનેના જાણવામાં શું ફેર કહેવાય? ऐसा आपका कहना है कि वह स्वभाव को भी जानेगा और विभाव रूप परिणमन को भी जानेगा, लेकिन ये विभाव रूप परिणमन है वो उस रूप में नहीं हूँ, ये भी साथ में उसका ज्ञान चल रहा है. बहुत अच्छा.
ज्ञानी जाननार बनने नो छे, स्वामी बनने नो नथी, तो क्या ज्ञानी गया अपना स्वामी नहीं है? तो यहाँ बनने का अर्थ क्या होता है? कर्म चेतना और कर्म फल चेतना, ये बनने का अर्थ होता है. ज्ञानी जाननार बनने नो छे, पन स्वामी बनने नो नथी. कर्म को भी जानता है, कर्म फल को भी जानता है, पन दोनों का ही स्वामी नहीं है. अपना तो स्वामी है वो, क्योंकि ऊपर के वाक्य के साथ इसका अर्थ नहीं जुड़ता है. ऊपर लिखा ना, निज आत्म वस्तु नो स्वामीपणु थयुं छे, તેને રાગનું સ્વામીપણું નથી. ખુદ કા તો સ્વામીપણા હૈ, એટલે યહાં જો લિખા હૈ પણ સ્વામી બંનેનો નથી. જાણનાર બંનેનો છે પણ સ્વામી બંનેનો નથી. તેમાં કર્મ ઓર કર્મ, કર્મ ચેતના ઓર કર્મ ફલ ચેતના, એને રાગ ઓર કર્મ કા ફલ દોનો કો હી જાણતા હૈ. ક્યો જાણતા હૈ? ક્યોંકિ દોનો હી હૈ પર્યાય મેં. પર્યાય મેં નહીં હોતે તો ઉસકી બાત હી નહીં હૈ. पर्याय में है, उसको जानता भी है, पर उनका स्वामी नहीं, ये बात यहाँ बताना चाहते हैं. बराबर है ना? ज्ञानी जाननार बनने नो छे, पन स्वामी बनने नो नथी. बनने नो स्वामी नथी में उसमें एक क्लैरिटी होती. अकेला अगर कहते कि ज्ञानी बनने नो जाननार छे, तो तेमा आत्मा ने पन जाननार छे ने राग ने पन जाननार, परंतु बनने नो स्वामी नथी, ये एक पूरा वाक्य है. इसलिए पहले बनने का अर्थ होता है राग और कर्मफल. वो हर्षो
વળી જ્ઞાની કર્મફળ ચેતના રહિત હોવાને લીધે પોતે અવેદક છે. વિકાર અર્થાત હરક્ષોકનું સુખ દુઃખનું જે ચેતવું થાય, એને જાણવું થાય, તે કર્મફળ ચેતના છે. એને ચેતવું, એને ઉસરૂપ મેં હું એસા હું માન રહે ને, તો ઉસકો કર્મફળ ચેતના કા. વિકારી પરિણામના ફળનું વેદવું તે કર્મફળ ચેતના છે. ધર્મી જીવ કર્મફળ ચેતનાથી રહિત છે અને તેથી અવેદક છે. આહાહ, નિજ ઘરમાં એકલો જ્ઞાનને આનંદ ભરેલો છે, જ્ઞાની તેનો વેદનારો છે. નિરાકુળ આનંદના વેદનમાં પડેલો જ્ઞાની હવે વિકારનો એટલે ઝેરનો સ્વાદ કેમ લે? ન લે. આ પ્રમાણે કર્મ ફળ ચેતના રહિત હોવાને લીધે જ્ઞાની અભોક્તા જ છે. દયાદાન ભક્તિ ઇત્યાદિ ભાવ એને થાય છે, પણ એનો એ ભોગતા નથી. આ પ્રમાણે જ્ઞાની કર્મને ઇધર લ્યા લિખા ને રાગાદિને, કર્મને અને રાગાદિને એટલે ભાવ કર્મને કરતોય નથી અને ભોગવતોય નથી. આહા, ચિદ બ્રહ્મ સ્વરૂપ ભગવાન આત્માનો એક જ્ઞાતા દ્રષ્ટા સ્વભાવ છે. સ્વ અને પરને જાણે એવો એનો સહજ સ્વભાવ છે. આહાહા, આવો નિજ સ્વભાવ અનુભવમાં આવ્યો હોવાથી જ્ઞાનીને એક જ્ઞાન ચેતના જ છે. આહાહા, કહે છે જ્ઞાન ચેતનામય હોવાને લીધે કેવળ જ્ઞાતા જ હોવાથી જ્ઞાની શુભાશુભ કર્મ બંધને તથા કર્મફળને કેવળ જાણે છે. અહીં ત્રણ વાત કરી, ઇસમે તીન બાતે કિસકી કિસકી બતાઈ? દેખો, જ્ઞાની કર્મ ચેતના રહિત હોવાથી અકર્તા છે, કર્મનો એટલે રાગનો કરતા નથી. જ્ઞાની કર્મ ફળ ચેતના રહિત હોવાથી અવેદક એટલે કર્મફળનો એટલે દુઃખ સુખ દુઃખાદીનો ભોગતા નથી, યાની કર્મ ચેતના કો અકર્તા મેં ડાલા ઓર કર્મફળ ચેતના રહિત કો અભોગતા મેં રખા, યાની શુભાશુભ ભાવ જો હૈ ઉસકા ના વો કરતા હૈ ના ભોગતા હૈ, તો ક્યા હોના ચાહીએ? જ્ઞાતા રહેના છે, બહુ અચ્છા, જ્ઞાની, જ્ઞાન ચેતનામય હોવાથી. ઉપર ક્યા કહા? કર્મ ચેતના રહિત, કર્મ ફળ ચેતના રહિત, ઓર નીચે કહેતે હૈ જ્ઞાન ચેતનામય હોવાથી કેવળ જ્ઞાતા જ છે. શુભાશુભ કર્મને અને કર્મફળને કેવળ જાણે છે, યાને વો તો સ્વ કો ભી જાનતે તો હૈ હી હૈ, કોણ? જ્ઞાની. લેકિન ઉસકે સાથ સાથ શુભાશુભ જો ભાવ હૈ, યાને જો ભાવ કર્મ હૈ, ઓર ઉસકે કારણ સે જો અપને સ્વરૂપ મેં ઉઠને વાલે રાગરૂપ દુઃખરૂપ એસે જો ભાવ હૈ, ઇન દોનો કો વો જાનતા હૈ, ઉસ રૂપ સ્વયં કો નહીં માનતા હૈ. અગર માનેગા તો કર્મફળ ચેતના વાલા હો ગયા, લેકિન યહાં વો હૈ કૈસા? જ્ઞાની હૈ, ઇસલિયે ઉસે જ્ઞાન ચેતનામય કહા, ઇસલિયે વો આપના જો જ્ઞાન સ્વભાવ હૈ, જ્ઞાતા સ્વભાવ હૈ, ઉસ રૂપી અપને કો માનતા હૈ, ઓર શુભાશુભ કર્મ કો ઓર કર્મફળ ચેતના ઇનકો ભી જાનતા હૈ. આહા, આ વો સાક્ષીપણે માત્ર જાણનાર જ રહે છે. इस साक्षीपणा मात्र का अर्थ क्या लेना रश्मि बहन? साक्षीपणे का साक्षीपणे मात्र जानना, जानना का भाव हो गया ज्ञाता दृष्टा. साक्षीपणे का अर्थ क्या है? नहीं દિવ્ય બેન, આપ બતાએંગે? નહીં ખ્યાલ મેં. અચ્છા ડોક્ટર સાહેબ, વો ઉસમેં રાગ દ્વેષ કે પરિણામ નહીં કર રહે ના? વો કૈસા હૈ? જો હો રહા હૈ ઉસકો જાનતા હૈ. આપકો માલૂમ હૈ, કોર્ટ મેં કોઈ કેસ ચલતા હો તો ઉસકો સાક્ષીદાર બુલાતે. આપ લોગ ક્યા બોલતે ગુજરાતી મેં? સાક્ષીદારી કહેતે ને. તો સાક્ષીદાર કા કામ ક્યા હૈ? કે યે બાત હો રહી થી ઓર મેને જાના. અબ આજકલ કે સાક્ષીદાર કો મત લેના, ઝૂઠા ખોટા કુછ ભી બોલે પૈસા લે લે કે, વૈસા ભાવ નહીં. યે તો બિલકુલ જૈસે હમારી આંખે ભી ક્યા કરતી હૈ, જો કુછ ચલ રહા હૈ ઉસકો સાક્ષી ભાવ સે દેખતી હૈ. આગ લગી હોગી તો આંખ જાકે આગ બુઝાતી હૈ કે નહીં? હ, તો જાન રહી હૈ બસ. ઓર વહાં જો ઉપર નીચે જો કુછ હો રહા હૈ ઇસ જીવ કો, વો તો રાગ પરિણામ હૈ. વો આંખ થોડી કુછ રાગ કરાતી હૈ. વૈસે યહાં યે કર્મફલ ઓર કર્મફલ ચેતના જો રૂપ જો રાગ પરિણામ હો રહે હૈ, ઇનકો યે જ્ઞાની ક્યા હૈ? સાક્ષી ભાવ સે જાનનાર હૈ. યે અચ્છા યે બુરા યે નહીં હોના ચાહીએ તો મેં કહેના હી રહા થા કે એસા મત કરો, તુમને ક્યા એસા કુછ નહીં, બસ જાન રહે કે એસા એસા યે કર્મ ફલ હો રહા, યે યે જ્ઞાન ચેતના એસી હો રહી યે વગેરે વગેરે જો કુછ હૈ. તો દોનો કો જાનતા હૈ વો, કે જાન ચેતના મેં હોવાથી વો રાગ દ્વેષ કે શુભાશુભ પરિણામો કો કેવલ જાનતા હૈ, ઉનકા કુછ કરતા નહીં હૈ. તો અભી જ્ઞાની હૈ તો કમ સે કમ વો બંધ તો કરના ચાહીએ ના? વો ઉસકે તરફ દેખતા હી નહીં, આપને સ્વરૂપ મેં દેખેગા તો ઓટોમેટિકલી વો ઉત્પન્ન હોના બંધ હો જાયેગા. આ વો સાક્ષીપણે માત્ર જાણનાર જ રહે એવો ધર્મી પુરુષ હોય છે. ધર્મી પુરુષ કિસકો કહેના? કે જો રાગ દ્વેષ કઈ કરતા નહીં, જો પરિણતિ બહાર મેં ચલ રહી ના ઉસકે પ્રતિ રાગ દ્વેષ પરિણામ જિનકે નહીં હૈ ઉસકો સાક્ષી કહેતે હૈ. સાક્ષીપણે જાણવું. હા, અબ આગે. વાહ. આ પ્રથમ મૂળ ગાથા સંસ્કૃત ટીકાની ગુજરાતી અનુવાદ આપેલ છે, પૃષ્ઠ 91 થી પ્રવચનનો પ્રારંભ થાય છે. અરે મેરે યહાં તો હા હા 320 અરે ઇમ્પોર્ટન્ટ હૈ યે તો
320 ગાથા. इसलिए जैसे नाचार्य की टीका दी है यहाँ पर संस्कृत और उसका अर्थ भी दिया है. देखो यहाँ तो प्राकृत गाथा है, बीच में एक पान छोड़कर आगे गुजराती गाथा है. संस्कृत यहाँ नहीं दी है, पर मैं मूल पुस्तक से पढ़ूंगी संस्कृत. तो आप प्राकृत गाथा मेरे साथ कहना, फिर गुजराती भी हम साथ में पढ़ेंगे. हरिगीत दिट्ठी जहे वणाणम अकारयं तः अवेदयं चेव जानय्य बन्धमोक्षं कमुदयं निज्जरं चेव दृष्टि यथैव ज्ञानं अकारकं तथा अवेदकं चैव जानाति च बन्धमोक्षं कर्मोदयं निर्जरा चैव जमनेत्र ते मज ज्ञान नथी का रक नथी वेद करे जाने च कर्मोदय निरजरा बंद ते मज मोक्षने जमनेत्र ते मज ज्ञान नथी का रक नथी वेद करे जाने ज कर्मोदय निरजरा बंद ते मज मोक्षने. गाथा का अर्थ यहाँ दिया नहीं ना कहीं. हाँ मैं पढ़ती हूँ मूल पुस्तक से. वैसे बहुत आसान है. यथा एव दृष्टि जेम नेत्र, दृष्टि ने आंखें, नेत्र दृश्य पदार्थों ने कर्तु भोगवतु नथी देखे छे. आंख कुछ करती नहीं, बस मात्र देखती है. सामने अग्नि हो या बर्फ हो, उसमें कुछ नहीं कर रही है, बस वो जानती है, देखती है. दृश्य पदार्थों ने कर्तु भोगवतु नथी देखे छे. तथा तेम ज्ञानम एटले ज्ञान, અકારકમ અકારક, અવેદકમ ચ એવ તથા અવેદક છે, અને બંધ મોક્ષમ બંધ મોક્ષ, કર્મોદયમ કર્મોદય, નિર્જરામ ચ એવ તથા નિર્જરાને જાણે છે. કિસ કિસ કો જાણતા હૈ? તો જ્ઞાન અકારક હૈ, અવેદક હૈ, બંધ કો જાણતા હૈ, મોક્ષ કો જાણતા હૈ, કર્મોદય કો જાણતા હૈ, તથા નિર્જરા કો ભી જાણતા હૈ. इन्हें करतो नथी जाने छे. अब यहाँ अमृतचंद्राचार्य की टीका नहीं लेते हुए किसके लिए? जयसेन आचार्य के लिए ना डायरेक्ट. अब उसकी को पढ़ेंगे.
तमेव અકર્તૃત્વ ભોક્તૃત્વ ભાવમ વિશેષેણ સમર્થયતિ.
તમેવ અકર્તૃત્વ ભોક્તૃત્વ ભાવમ, એને અ દોનો જગે લગાના. અકર્તૃત્વ ભોક્તૃત્વ ભાવ એને અકર્તૃત્વ ઓર અભોક્તૃત્વ, જૈસે હમ અગુરુ લઘુ કહેતે ના, વૈસે યહાં પર અ દોનો કે લિયે લગાયા.
નહીં
87 संस्कृत एक लाइन पढ़ूंगी और उसका अर्थ फिर आगे पढ़ूंगी. बीच में एक पेज है, आपको पलटाना पड़ेगा बारंबार, क्योंकि पूरा पढ़ लूँ तो फिर अर्थ ख्याल में नहीं आएगा. या मुझे लगा तो मैं दो तीन लाइन भी पढ़ूंगी. आप ख्याल रखना. कहते तमेव, कुछ कहना चाहते आप?
ये इसका गुजराती में ट्रांसलेशन नहीं है इसमें,
है ना? आगे
कहाँ है?
89 पेज पर.
अच्छा,
वहाँ लिखा है ना तात्पर्य वृत्ति टिकानो गुजराती अनुवाद मिला.
अपन यहाँ ये जो दिट्टि स्वयं पिनाणम अकार्यम तहम अवेदम, ये तो गाथा का अर्थ दिया है। अच्छा आप पढ़ो। हाँ ठीक ठीक ठीक। नहीं ये जो लिखा है तेमज अकर्तु तो भूतो दृढ़ पने विशेष करना चाहिए।
देखो
समर्थ ही थी। अच्छा
क्या है अभी हमने जो गाथा पढ़ी
है ख्याल में है।
बाकी लोगों को आने दो अभी। यहाँ दिट्टि स्वयं पिनाणम लिखा है बराबर। अब यहाँ कहते हैं दिट्टि स्वयं पिनाणम ने बदले आत्मख्याति टीका मा दिट्टि जहेव नाणम है वो पाठ छे। तो दोनों ही पाठों का अलग अलग अर्थ दे रहे हैं। अब हम शुरू से पढ़ते तमेव अकर्तृत्व भोक्तृत्व भावम विशेषेण समयर्थ इति। अभी इसका अर्थ मैं आगे आगे से पढ़ूंगी। एक पेज हाथ में रखना आप। तेज अकर्तृत्व भोक्तृत्व भाव ने विशेषपणे दृढ़ करे छे। पहले भी गाथा में दृढ़ किया था अभी और भी विशेषपणे दृढ़ करते यानी अभी तो दृष्टांत भी दे देंगे। दिट्ठि स्वयं पिनाणम अकारयम तह अवेदयम चेव। अभी इसका अर्थ करते हैं। यथा दृष्टि कर्त्री, ये दृष्टि स्त्रीलिंग है ना, पुल्लिंग को कर्ता कहते हैं इसलिए यहाँ इसलिए कर्त्री कहा यानी नेत्र को यहाँ कर्ता कहा। क्या करता है वह? दृश्यम अग्नि रूपम वस्तु, ये दृष्टि यानी नेत्र का दृश्य यानी क्या देखने में आता है, अग्नि रूप वस्तु। संदुक्षणम पुरुषवत न करोती। संदुक्षण का अर्थ मालूम है? पहले के जमाने में वो तो मार्ग पर रस्तों पर लाइट नहीं होती थी तो क्या कहते थे, शाम को एक आदमी आके वो दिए जलाता था। हाँ लैंप जलाते हैं तो उसको कहते वो अग्नि को जलाने वाला पुरुष। या घरों में भी वो झूमर लगाते थे, बड़े बड़े झूमर लगते थे और उसके अंदर वो मोमबत्तियां रहती थी और उसको भी जलाने वाला कोई था। तो आंखें क्या करती थी उसको, जैसे वो पुरुष जलाता था और अग्नि सलगाता था वैसे वो आंखें भी करती थी। क्या करते थे? देखने वाला तो बस देख रहा है, वो कर नहीं रहा है। तो यहाँ उदृष्टान दिया संदुक्षणम पुरुषमत न करोती तथा वच, ये तो नहीं करने के लिए दृष्टान दिया, अब नहीं भोगने के लिए भी दृष्टान दे रहे हैं। तप्ता यह पिंडवत अयस यानी लोह, तप्त अयस यानी तपा हुआ लोहे का गोला, पिंड ने गोला उसके समानवत अनुभव रूपेण न वेदयती। जैसे लोहा जो है अग्नि में गर्म करने पर वो अपने को गर्म रूप अनुभवता है लोहा, तो क्या देखने वाला भी उसको वैसे अनुभव करता है? नहीं। तो ये दो उदाहरण दिए। अब हम गुजराती में से पढ़ेंगे। जेवी रीते नेत्र करता दृश्य एवी अग्नि रूप वस्तु ने संदुक्षण ने संदुकण करनार पुरुषनी माफक, संदुकण ने वो तो जलाने वाला, करतु नथी ये नहीं करने के लिए जो उदाहरण दिया, जैसे आंखें कुछ नहीं करती है वो जलाने वाला पुरुष अलग है और देखने वाला आंखें तो अलग है वो कुछ नहीं करती है। अने तपेला लोखंडना पिंडनी माफक अनुभव रूपे वेतु नथी, यानी जो तप्त ऐसा लोहे का पिंड है वो अग्नि को अनुभवता है ऐसे ये देखने वाला अनुभवता नहीं है। अब आगे हम संस्कृत पढ़ेंगे। तथा ये तो दृष्टांत हो गया आंखों का और अन्य चीजों का। तथा शुद्ध ज्ञानम अपि अभेदेन शुद्ध ज्ञान परिणत जीवो वा स्वयं शुद्ध उपादान रूपेण न करोति न च वेदयति। इसका अर्थ देखते हैं। तेवी रीते शुद्ध ज्ञान पण अथवा अभेद थी शुद्ध ज्ञान परिणत जीवपन, शुद्ध ज्ञान कहो या वो अभेद रूप से कहना है तो वो शुद्ध ज्ञान परिणत जीव कहो, एक ही बात है। भेद से बताना है तो ज्ञान को लिया, और अभेद सुकन है वो ज्ञान करने वाला जीव है, इसलिए जीव को लिया। वो क्या कहते हैं, पोते शुद्ध उपादान रूपे करतो नथी अने वेदतो नथी, यानी वो करने वाला भी नहीं है और वेदने वाला भी नहीं है। ये एक पाठांतर हुआ, यानी एक पाठ ये हुआ, किसका हुआ वो पाठ, दिट्ठी स्वयं पिनानम अकारयम तह अवेदयम चेव। जिस प्रकार दृष्टि यानी नेत्र स्वयं अकारक और अवेदक है, वैसे ज्ञान भी अकारक और अवेदक है। अब जो पाठांतर यानी अन्न पाठ जो पाया जाता है संस्कृत में देखते हैं, अथवा पाठांतरम दिट्ठी खयम पिनानम तस्य व्याख्यानम। अब ये जो दूसरा पाठ है दिट्ठी खयम पिनानम, उसका व्याख्यान उसका अर्थ अब बताते हैं। न केवलम दृष्टि ही क्षायिक ज्ञानम अपि निश्चयेन कर्मणाम अकारक तथैव अवेदकम अपि। ये मात्र दृष्टि ही नहीं परंतु क्षायिक ज्ञान पण। क्षायिक ज्ञान किसको कहते हैं और रश्मि बेन? क्षायिक समय दृष्टि को क्षायिक ज्ञान है कि नहीं है, चौथे वाले को?
क्षायिक समय दृष्टि को पूछ
रही है, क्षायिक समय दृष्टि को चौथे गुणस्थान में क्षायिक ज्ञान है ना, है। हाँ आप क्या कहते सर लवेन? क्षायिक सम्यक तो कहो, दर्शन भी मत कहो, यानी क्षायिक दर्शन यानी केवल दर्शन हो जाएगा। क्षायिक सम्यक तो की बात चल रही है, चौथा गुणस्थान वाला है। और क्षायिक ज्ञान कब होता है? केवल ज्ञान को क्षायिक ज्ञान कहते हैं, उसका मिथ्यात्व का क्षय हो गया है, दर्शन मोह का क्षय हो चुका है, अनंत अनुबंधी का हो गया, इसलिए उसको क्षायिक सम्यक भी कहते हैं। गुणस्थान चौथा है, उसको क्षोभसम ज्ञानी है कि क्षायिक ज्ञानी है? हाँ क्षोभसम ज्ञानी, ख्याल है ना। हाँ। तो कहते हैं अभी यहाँ क्षायिक ज्ञान की बात चल रही है, दूसरा पाठांतर चल रहा है ना अभी, कि मात्र दृष्टि नहीं परंतु क्षायिक ज्ञान पण निश्चय थी, कर्मों अकारक तेमज अवेदक पण छे। अब आगे क्या बता रहे पूछे देखेंगे। तथा भूता सन किम करोती, तथा भूतम सन यानी ऐसे होते हुए वो क्या करता है, यहाँ क्या लिखा है, तेवो होतो थको एटले शुद्ध ज्ञान परिणत जीव शू करे छे। तो कहते जानती ये बंध मोक्षम, जानाती च यानी जानता ही है, कौ किसको जानता है, बंध मोक्षो बंधको और मोक्ष को जानता है। यहाँ भी लिखा है ना कि जाने छे कोने, बंध मोक्ष ने मात्र बंध मोक्ष, हाँ बंध मोक्ष ने जाने छे। न केवलम बंध मोक्ष, मात्र बंध मोक्ष को ही जानता है ऐसा नहीं, इसका अर्थ क्या है, और भी किसी को जानता है, है नॉट ओनली, तो और किसको जानता है? तो कहते कमुदयम निज्जरम चेव शुभाशुभ रूपम कर्मोदयम सविपाक अविपाक रूपेण सकाम अकाम रूपेण वा द्विधा निर्जराम चैव जानाती थी। क्या कहते हैं, कर्मोदय को भी जानता है और निर्जरा को भी जानता है, तो निर्जरा के और भेद कर दिए, कौन कौन से किए, सविपाक अविपाक रूप से या सकाम अकाम निर्जरा रूप से। देखो यहाँ लिखते गुजराती में कर्मोदयम निज्जरम चैव, तो शुभ अशुभ कर्मोदय ने तथा सविपाक अविपाक रूपे ने सकाम अकाम रूपे बे प्रकार नी निर्जरा ने पण जाने छे। एवं सर्व विशुद्ध पारिणामिक परम भाव ग्राहकेन शुद्ध उपादान भूतेन शुद्ध द्रव्यार्थिक नयेन। ये शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है, इस नय के विरुदावली बड़ी बड़ी बताओ जी, ये कैसा है नय तो फिर पढ़ेंगे। सर्व विशुद्ध पारिणामिक परम भाव ग्राहकेन शुद्ध उपादान भूतेन, ये दोनों विशेषण हो गए किसके, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के, अब गुजराती देखना, सर्व विशुद्ध पारिणामिक परम भाव ग्राहक, यानी जो सर्व विशुद्ध है पारिणामिक भाव, जो परम पारिणामिक भाव है उसका ग्राहक, यानी उसको ग्रहण करने वाला, उसको जानने वाला, शुद्ध उपादान भूत शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से, शुद्ध द्रव्यार्थिक नये यानी शुद्ध द्रव्यार्थिक नये से, आगे क्या कहते हैं, यानी उस नये से जो कुछ बात है वो अभी बता रहे, कर्तृत्व भोक्तृत्व बंध मोक्षादि कारण परिणाम शून्यो जीव इति सूचितम्। शुद्ध द्रव्यार्थिक नये से क्या है, जीव जो है वह कर्तृत्व भोक्तृत्व थी तथा बंध मोक्षना कारण ने परिणाम थी शून्य छे। क्यों ऐसा कहा, शुद्ध निश्चय नय जो है वो उसमें भेद नहीं पाड़ता और ना ही उसमें कुछ अन्य बात, उसमें ना बंध है, शुद्ध निश्चय नय से जीव को बंध भी नहीं है, मोक्ष भी नहीं है, कर्म से बंधा भी नहीं है, तो कर्म के उदय और निर्जरा की भी बात उसमें नहीं है। उस नय की दृष्टि में ये भूलना नहीं, जीव को है ही नहीं ऐसी बात नहीं है, इस नय की दृष्टि में, क्योंकि वो शुद्ध निश्चय नय बस अभेद अखंड एक जीव को स्वीकार करता है, उसमें तो पर्याय के भेद भी नहीं करेंगे तो ये बंध मोक्ष की बात तो कहां की रहेगी। तो शून्य छे इति सूचितम्। समुदाय पातनिकायाम, तो एम समुदाय पातनिका मा केवामा आयु हतु। समुदाय पातनिका का अर्थ क्या होता है, देखो जो गाथा है बीत चुकी है और जो आने वाली, जो उसके समुदाय रूप से उसका जो कुछ उपोदघात आदि करते उसको ये पातनी जोड़ रूप जो बीच में बताते, शुरू होने के कोई भी अधिकार शुरू होने के पहले उसका इंट्रोडक्शन, और फिर कितनी गाथा है उसमें क्या बताने वाले वो भी उसका सब बता देते हैं। पश्चात गाथा चतुष्टयेन जीवस्य अकर्तृत्व गुण व्याख्यान मुख्यत्वेन, ये मुख्यत्वेन चाहिए, मुख्यत्वेन हुआ है,
तो नहीं चाहिए,
हाँ मुख्यत्वेन बीच में ये तो है ना, वो व को जोड़ना, मुख्य ख को य करना और वो आधा तो है वो व को जो वे को जोड़ना, मुख्यत्वेन सामान्य विवरणम कृतम। अभी जो समुदाय पातनिका जो कहते हैं वो क्या विषय हो चुका है और क्या आने वाला है इसको जोड़ता है, तो ये कहते हैं कि चार गाथाओं के द्वारा जीव का जो अकर्तृत्व गुण की व्याख्यान के मुख्यता से सामान्य से उसका वर्णन किया है। देखो गुजराती में देखना, पछी चार गाथा द्वारा जीवनु अकर्तृत्व गुणना व्याख्यान नी मुख्यता थी सामान्य विवरण करवामा आव्यु। आगे संस्कृत में पुनरपि गाथा चतुष्टयेन शुद्धस्य अपि यत् प्रकृति भी बंधो भवति तद् अज्ञानस्य महात्म्यम् इति अज्ञान सामर्थ्य कथन रूपेण रूपेणे हुए रूपेण विशेष विवरणम कृतम्। यानी उसके पश्चात ये हम क्या पढ़ चुके उसकी बात आ रही है यहाँ पर, त्यार पछी चार गाथा द्वारा शुद्ध ने पण जे प्रकृति साथे बंध थाय छे ते अज्ञान नु महात्म्य छे। ऐसा पता ना, जीव का स्वभाव शुद्ध है और ऐसे होते हुए भी कर्म का बंध हो रहा है, ये अज्ञान का महात्म्य ऐसा बताया था। एम अज्ञान नु सामर्थ्य केवा रूपे विशेष विवरण करवामा आव्यु। पुनश्च गाथा चतुष्टयेन जीवस्य अभोक्तृत्व गुण व्याख्यान मुख्यत्वेन व्याख्यानम कृतम्। और फिर उसके बाद क्या हुआ, चार गाथा द्वारा जीवनु अभोक्तृत्व गुणना व्याख्यान नी मुख्यता थी व्याख्यान करवामा आव्यु। ये हम जो पढ़ चुके हैं ना उसकी बात चल रही है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तदनंतरम शुद्ध निश्चयेन तस्यैव कर्तृत्व बंध मोक्षादि कारण परिणाम वर्जन रूपस्य द्वादश गाथा व्याख्यानस्य उपहार संहार रूपेण गाथाद्वयं गतम। त्यार पछी बे गाथा कहेवामां आवी जेना द्वारा पूर्वे बार गाथामां शुद्ध निश्चय थी कर्तृत्व भोक्तृत्वना अभावरूप तथा बंध मोक्षना कारण ने परिणामना अभावरूप जे व्याख्यान करवामां आव्युं तेनो ज उपसंहार करवामां आव्यो, उसी को दृढ़ करते ऐसा कहकर बताया था वहां पर। गाथा द्वयम गतम, ऐसी दो गाथाएं गई। इति समयसार व्याख्यायाम शुद्धात्मानुभूति लक्षणायाम तात्पर्य वृत्तौ मोक्षाधिकार संबंधिनी चूलिका समाप्ता। आ रीते समयसारनी शुद्धात्मानुभूति लक्षण तात्पर्य वृत्ति नामनी टीका मा मोक्षाधिकार संबंधी चूलिका समाप्त थई, अथवा द्वितीय व्याख्यानेन अत्र मोक्षाधिकारः समाप्तः, अथवा बीजी रीते व्याख्यान करता अहीं मोक्षाधिकार समाप्त थयो। हमारा कौन सा अधिकार चल रहा है? सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। और यहाँ जयसेन आचार्य ने मोक्षाधिकार यहाँ तक बताया है, यहाँ समाप्त होता है ऐसा बताया है ना। ये तो विवक्षावश उसका अलग अलग उन्होंने वर्गीकरण किया है।
ये कुंदकुंदा आचरण, ये पहला अधिकार है, जीव अधिकार है, कर्ता कर्माधिकार, ऐसा कुछ नहीं कहा।
ये तो अमृतचंद्र आचार्य ने, हाँ।
फिर आगे के आचार्य ने उसके अपने अपने हिसाब से उसके भेद कर डाले। चूलिका, चूलिका का अर्थ ऐसा होता है कि जो कुछ बात कहने की रह गई है और जो कुछ कहा गया है उसमें जो मूल बात है, ये दोनों कहना। यानी हम कभी कभी रिपीट भी करते हैं ना जो बातें हुई है, और कभी कभी कुछ बात बताने की रह भी जाती है, दोनों बातें आखिर चूलिका में आती।
पढ़ना है ना?
हाँ
हाँ,
चलो बोलो बोलो।
ये दो तीन लाइन होगा। किमच विशेष, हाँ,
इसमें क्या,
यानी यहाँ कुछ विशेष कहते हैं। औपशमिकादि पंच भावाना मध्य, औपशमिकादि जो पांच भाव है कौन कौन से है? हाँ, औपशमिक, शौपशमिक, शायिक, औदयिक और पारिणामिक। हाँ, ये पांच भाव, उनमें से केन भावेन मोक्षो भवति इति विचार्यते, किस भाव से मोक्ष होता है इसका विचार करते हैं। तत्र औपशमिक, शायोपशमिक, क्षायिक, औदयिक भाव चतुष्टयम् पर्याय रूपम भवति। कितना आसान है ना, ये पारिणामिक को छोड़कर अन्य जो चार भाव है वे पर्याय रूप भाव है। शुद्ध पारिणामिक हस्तु द्रव्य रूप इति, और जो शुद्ध पारिणामिक भाव है वो द्रव्य रूप भाव है। तच्च परस्पर सापेक्षम द्रव्य पर्याय आत्मा पदार्थो बन्यते, द्रव्य पर्यायत ही आत्मा पदार्थो बन्यते। और वहां पर जो परस्पर सापेक्ष, परस्पर सापेक्ष कहा है, सर्वथा नहीं कहा। तो एक क्या कहा, पर्याय रूप भाव और द्रव्य रूप भाव। और ये जो परस्पर सापेक्ष है उजे द्रव्य पर्याय द्वय, द्रव्य पर्यायत द्व्यात्मा चाहिए, ध्यात्मा है, द्व्यात्मा चाहिए, द्वयात्मा, ते आत्मा पदार्थ छे। यहाँ तो द्वय लिखा है और यहाँ तो ध्य लिखा है।
पर्याय द्वयात्मक,
द्वयात्मक चाहिए, द्वयात्मा पदार्थो बन्यते। इसमें नहीं होगा, वो कल देखेंगे, देख के बताएंगे। तात्पर्य वृत्ति टीका निकाल कर उसमें से ठीक क्या है उसको शुद्ध करेंगे कल। अब यहीं रुकते हैं हम, ये किमच विशेषा यहाँ से फिर दोबारा ले लेते हैं।
जावानी के ज्ञान तय सूजे लोकालो सोवा।